भन्ते पंच महागुरु भक्तिकाउ सगो कौ तस्लोचेउ अठ महापाडिहेर संयुक्तानम अरहंतानम अठ गुण संपन्नानम उड्डलोय मत्थयम पैठ्यानम सिद्धानम अठ पवयन माउ संयुक्तानम आयरियानम आयारादि सुजनानो विदेशयानम उवध्यायानम तिरियन गुण पालन रयानम सब साहूनम मिच्छकालमच्छेमि पूजेमि वंदामि नमिसामि दुखखौ कमखौ गोहिलाहो सुगै गमनं समाहि मरणं जिनुं संपत्ति हो मज्जन। वंदितु सर्व सिद्धि धुवमचल मनोवमंगईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुय केवली भणियम। अथ जीवा जीवौ एकीभूतौ प्रविशतः। नौ पदार्थों को आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने एक रंगमंच पर नाटक की शैली में प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम जीव और अजीव इन दो पदार्थों को रंगमंच पर लाते हैं। ये दो एक बन करके आ रहे हैं, हैं दो लेकिन एक बन करके उस मंच पर प्रवेश करते हैं। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्याय पार्षदा ना संसार निबद्ध बंधन विदित ध्वंसाद्विषिद्धं स्फुटत आत्मा राम मनंत धाम महसा दक्षिण नेत्योदितं धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मलोह्लादय। अनंत तेज के प्रकाश द्वारा नित्य प्रकट धीर और उदात्त अनाकुल जो ज्ञान है वो उन दोनों को एक साथ देखता हुआ भी सभाजनों को बतला देता है कि ये दो एक होकर के भी एक नहीं है, दोनों भिन्न हैं। और कर्म बंधन आदि सबसे पृथक ये आत्मा एक है और बाकी जो पुद्गल आदि वो भिन्न है। जैसे कभी किसी नाटक के खेल में या किसी शो में जब कोई हाथी या घोड़े का प्रवेश होता है तो उसके पीछे के पैर किसी और आदमी के होते हैं और सामने के पैर किसी और के होते हैं, और वो फिटिंग ऐसे की जाती है, ऊपर से ऐसा वो ढांचा बनाया जाता है कि देखने वालों को लगता है कि अरे वाह हाथी आ रहा है या घोड़ा आ रहा है, पर होते दो हैं। तो जानने वाले जानते हैं कि दो है और नहीं जानने वाले सोचते हैं कि एक है। बस इसी तरह यहां आचार्य कुंतम स्वामी कहते हैं कि नहीं जानने वाले जीव को क्या समझते हैं और जानने वाले जीव को क्या समझते हैं। गाथा 39 है, अपान मयानंता मूढ़ाद पर जीवं अज्वसाणम कम मंचतहा परूविंदी। अपान मयानंद आत्मा को न जानने वाले कई परपवादी ने मूढ़ा, कोई पर को आत्मा कहने वाले मिथ्या जिसकी जीव, जीवम अज्वसाणम परूविंदी जीव को अध्यवसान प्ररूपित करते हैं। अध्यवसान का अर्थ क्या होता है? अपने अंदर के जो पैशंस होते हैं, जो आवेग होते हैं, जो कषाय भाव होते हैं, उसको जीव बतलाते हैं। ये जो अंदर में जितनी तीव्रताएं आ रही है या मंदता आ रही है, तीव्रता मंदता की भी चर्चा आगे बतला रहा है, लेकिन अभी जो ये अध्यवसान है, अध्यवसान का अर्थ जीव का परिणाम, शुभ परिणाम होता है अशुभ परिणाम होता है, बस वो जो परिणाम हो रहा है वो जीव है। ये शरीर जीव नहीं है। देखो कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव कह रहा है। अर्थात मिथ्या दृष्टि भी, ऐसे कई मिथ्या दृष्टि हैं जो शरीर को जीव नहीं मानते, समझ रहे हैं आप बात को? तो अब यहां पर क्या है कि आचार्य कुंतम स्वामी उसकी बारीकी में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर भिन्न है। ये तो फिर हिंदुस्तान के हर दर्शन में ये बात आती है, चार्वाक दर्शन को छोड़कर। वैशेषिक दर्शन भी आत्मा और शरीर को भिन्न मानता है, नैयायिक दर्शन भी आत्मा शरीर को भिन्न मानता है, बौद्ध दर्शन भी भिन्न मानता है, और ऐसे जितने भी आत्मवादी दर्शन हैं, जो भी आत्मा को स्वीकार करने वाले दर्शन हैं, वे सारे दर्शन आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं। पर फिर भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। कैसी मान्यताएं हैं? देखिए पहली मान्यता ये बतला रहे हैं कि अपानम अयानंता, उस वास्तविक आत्मा को, पांच विशेषणों वाले आत्मा को, कौन से पांच विशेषण? अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त इन विशेषणों वाले आत्मा को न जानने वाले मिथ्या दृष्टि पर को आत्मा कहने वाले मिथ्या दृष्टि जीव कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो अंदर का परिणाम है वो जीव है। देखो यहां पर क्या दोष आ रहा है, क्या वो परिणाम जीव नहीं है? बताइए। देखो ये सारी जो मान्यताएं हैं ये अनजाने में है, जैनों के अंदर भी हो सकती है। यानी ठीक है, परिवार जैन परिवार होगा और फिर संप्रदाय जैन संप्रदाय हो सकता है, लेकिन मान्यता जो है वो अन्य मत जैसी हो सकती है। ठीक है, उसने कहीं से उपदेश नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मान्यता ऐसी संस्कारवश आ सकती है। तो इसमें वो परिणाम ही जीव है ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। आप क्या मानते हैं, शुभ अशुभ परिणाम जीव है या नहीं है? नहीं है तो क्या है वो परिणाम? क्या है परिणाम का अर्थ? भाव है, ये तो हम भी जानते हैं और सारे यहाँ जितने श्रोता है सब जानते हैं। ये हमने पूछा ही नहीं था कि परिणाम का अर्थ क्या है। प्रश्न ये है कि परिणाम जीव है क्या? नहीं है तो फिर परिणाम क्या है? परिणाम भाव है, वो तो ठीक है, परिणाम कह लो, भाव कह लो, उपयोग कह लो, और भी कोई पर्यायवाची शब्द हो डिक्शनरी में तो वो सब कह लो, लेकिन वो है क्या वस्तु? अगर जीव नहीं है तो क्या है, ये प्रश्न है ना। देखो अभी इसमें क्या है कि बाल की खाल निकाल करके एकदम स्पष्ट जीव का स्वरूप आपके अंदर बैठ जाए, ये आचार्य कुंदकुन स्वामी का प्रयास रहेगा, क्योंकि इतनी बारीक बारीक त्रुटियां रहती है कि 11-11 अंगों के पाठी होने के बाद भी मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता। तो ये परिणाम क्या है, इसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? परिणाम को जीव मानने वाला मिथ्या दृष्टि ऐसा क्यों कहा? अब इसको सुनकर आप कहोगे कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि आपको डर है कि हमें मिथ्या दृष्टि ना मान लिया जाए। इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज ये पता चल जाए कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो फिर सम्यक्त्व पुरुषार्थ आज कर सकता है कोई भी जीव। जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि होते हुए भी सम्यक दृष्टि मानता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। इसलिए जैन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना सबसे कठिन होता है। जैन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वो अपनी दृष्टि में सम्यक दृष्टि होता है, तो अब जो है ही सम्यक दृष्टि उसको कौन बना सकता है सम्यक दृष्टि? इसलिए अगर देखो अपने को ज्ञान नहीं है, मान लो ना कि अज्ञानी है, क्या बिगड़ रहा है अपना गुरु के सामने ये कहने में? क्या बुराई है कि हमें नहीं है ज्ञान? आप बताइए, हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं, हम देवशास्त्र गुरु की शरण में इसलिए हैं कि हमें वो चीज मिले जो नहीं है हमारे पास। अब आप है ऐसा बोलकर मिथ्या अहंकार के साथ आएंगे तो इससे तो कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पहली चीज है विनय, एकदम नम्रता से समर्पित हो जाओ और फिर बताओ गुरु से कि गुरु से बोल दो कि गुरुवर मुझे नहीं मालूम, मैं जितना जानता हूं मैं दावा नहीं करता कि वो परिपूर्ण है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ। आप बस समझाते जाइए और मुझ में जो जो त्रुटियां होंगी मैं पूरे पुरुषार्थ से उनको निकालता जाऊंगा। अभी आचार्य कुंदकुन स्वामी ने कहा कि परिणाम को जीव मानने वाले जीव मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जीव परिणाम मात्र नहीं है, जीव तो परिणामी है। अंतर समझे? देह जीव नहीं है लेकिन जीव देही है। क्या अर्थ हुआ? देही, देही का अर्थ क्या है? देह को धारण करने वाला। तो जो धारण किया वो अलग है और धारण करने वाला अलग है। परिणाम अर्थात भाव जीव में जरूर है लेकिन वो भाव मात्र जीव नहीं है, उस भाव को करने वाला जीव है। फिर क्या, कमंच तहा परोविंदी, और कुछ ऐसे अन्य मति है या मिथ्या दृष्टि है जो कर्म को जीव कहते हैं, जो भी शुभाशुभ कर्म है, पुण्य पाप, जीव क्या है? बोले कि पुण्य पाप का एक पुंज है और कुछ नहीं है जीव। और अपेक्षा से आप विचार करो तो ये सब उन्होंने अंतर्मुख होकर के कुछ विचार करके ही माना होगा ना। क्या है कि सब लोग दुनिया को ठगने के लिए नहीं निकलते, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, सब लोग दूसरों को छलने के लिए नहीं निकलते। जैसे उदाहरण के लिए किसी राजा के साथ कोई ऐसी घटना हो गई कि उसको संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया, और मान लो उसको जैन गुरु नहीं मिले, और फिर भी वो सोचता है कि मैं तो तपस्या करूंगा, तो वो तपस्या करने जाता है, तो उसके अंदर भावना में खोट नहीं है, पर उसको सही मार्गदर्शक या मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, इसलिए वो वहां पर प्रयास कर रहा है अपने ढंग से। कोशिश क्या है उसकी, कि मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। पर देवशास्त्र गुरु का समागम बड़ा दुर्लभ है, ये तो जिसको मिल जाता है उसको लगता है कि ये तो कहां दुर्लभ है, जिसको नहीं मिला उससे पूछो आप कितना दुर्लभ है। और जिसको सात आठ जन्म बीत गए प्राप्त करने का प्रयास करते करते फिर भी नहीं मिला है, उसको पूछो कि कितना दुर्लभ है। ये तो पता नहीं कौन सा पुण्य कर लिया उस जन्म में कि उसके कारण इस जन्म में आपको अनायास ये सब मिल गया। उसकी कीमत आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो बहुत मूल्यवान है। तो ऐसे कुछ लोगों ने विचार किया अंदर में कि है क्या आखिर वो, मैं आत्मा, आत्मा आत्मा तो बहुत सब जगह सुनने मिला है, गीता में भी आत्मा की बात आती है, उपनिषदों में भी आती है, और भी कई ग्रंथों में आत्मा की चर्चा आती है, वो है क्या आत्मा? तो फिर वो सब ऋषि मुनि और संत साधु सब अपनी साधना में बैठकर अनेक प्रकार से योग आदि का अनुभव करते करते फिर ऐसे कुछ निर्णय लेते हैं। तो आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि वो अभी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उन्होंने प्रयास तो किया है, कुछ गहराई में जाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचने पर सम्यक दृष्टि बनता है। तो देखो परिणाम तक तो पहुंचे ना, वो कितनी बड़ी बात है। अभी कई लोग तो शरीर में ही अटके हुए हैं, भले जैन हो, जैन होते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्वाध्याय का कोई भाव नहीं आता, और फिर वो इसी को अपना रूप मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो वो तो थोड़ी गहराई में गए, बोले कि जो अंदर शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं वही जीव है। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि अभी थोड़ा चूक रहे हो, वहां तक नहीं जा पाए जहां पर जीव रहता है। फिर कोई ऐसा मानते हैं कमंच कर्म जीव है, अर्थात पुण्य पाप का जो पिंड है, पुण्य पाप का जो समूह है, बस उसी का नाम जीव है, क्योंकि पुण्य पाप और कहीं नहीं पाए जाते। ये भी एक दृष्टि से विचार करो तो विचार में तो आता है कि पुण्य पाप तो और कहीं नहीं होते, कहाँ होते पुण्य पाप, जीव में ही होते हैं। तो उस आधार को नहीं पकड़ा, लेकिन आधेय, समझ में आ रहा है, आधार जीव है, लेकिन ये जो पुण्य और पाप जो थे वो आधेय थे, आधार को पकड़ने वाले, तो उस आधेय तक पहुंच गए वो, बोले कि ये जीव है। फिर क्या कहते हैं, अवरे अज्वसाणी सुतिव्रमंदाणुभाग गण जीवं मन्नन्ति तहा अवरे नु कम्मंचावि जीवोति। और दूसरे मिथ्या दृष्टि लोग ऐसा मानते हैं कि अज्वसाणी सुतिव्रमंदाणुभाग गण जीवं, उन अध्यवसानों में, उन शुभ और अशुभ परिणामों में जो तीव्रता और मंदता की शक्ति को प्राप्त होता है वो जीव है। पर वास्तव में देखा जाए तो तीव्रता और मंदता की शक्ति को प्राप्त होने वाला तो वो भाव है, जैसे कषाय भाव, क्रोध भाव आया, अब वो क्रोध तीव्र भी हो सकता है और थोड़ी देर बाद शांत भी होता है, मंद भी हो जाता है। तो उनका मानना यह है कि ये तीव्रता और मंदता वाली जो स्थिति बन रही है वो जीव है। पर वास्तव में वो परिणामों में ही विशेषता है। कभी तीव्र परिणाम है, कहीं मंद परिणाम है, पर वो जीव नहीं है। फिर अवरे नोकम्मन चावि जीवोत्ति मंडन्ति, उसी प्रकार दूसरे मिथ्या दृष्टि ऐसे भी हैं जो शरीर को ही जीव मानते हैं। चार्वाक मत है। चार्वाक मत का क्या कहना है कि पंचभूतों के मेल से जो एक चेतना स्फुरित हो गई है, पंच तत्वों से बनी हुई ये जो काया है, इसमें जो एक पंच तत्वों का मेल हो गया है, उससे चेतना उत्पन्न हुई है, वो जीव है। अर्थात वो इससे पहले जीव को नहीं मानते, इससे बाद भी जीव को नहीं मानते। जब तक ये पंच तत्व है तब तक जीव है, नहीं थे तब जीव नहीं था। माँ के गर्भ में शुरुआत हुई पंच तत्वों के मिलन की, और फिर धीरे धीरे वो विकसित होते होते बालक जन्मा, बालक जन्मा, और फिर मरण तक वो जीता रहा, और उसके बाद उसमें से चेतना निकल गई, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर जलकर राख हो गया, बस इतना ही जीव है। यानी पंच तत्व का जो मेल है वही जीव है। इसको अपन जैन भाषा में कहेंगे कि नौकर में ही जीव है, ऐसा कुछ मिथ्या दृष्टि लोग मानते हैं। फिर और लोग क्या मानते हैं, कम सुदयन जीवम अवरे कम्माणु भाग में क्षंति तिवत्तन मंदत्तन गुणे ही चूसो हवति जीवो। बोले जी कर्म का उदय, अर्थात कर्म का जो फल प्राप्त हो रहा है वो जीव है। पुण्य और पाप के फल को कुछ लोगों ने जीव माना है, और कुछ लोगों ने क्या माना है कि कर्मों के जो अनुभाग होते हैं, पुण्य कर्मों के अनुभाग चार प्रकार के हैं, पाप कर्मों के अनुभाग भी चार प्रकार के हैं। पुण्य के अनुभाग जो है गुड प्रथम स्थानी, खांड द्विस्थानी, शर्करा त्रिस्थानी, और अमृत ये चतुस्थानीय, ऐसे चार अनुभाग माने हैं शुभ प्रकृतियों के। और अशुभ प्रकृतियों के भी चार अनुभाग माने, निम्ब प्रथम स्थानी, निम्ब यानी नीम, फिर कांजीर जिसको कंजी बोलते हैं, और यहाँ गुजरात में करंज बोलते हैं, करंज का पेड़ होता है ना, बुंदेलखंड में कंजी बोलते हैं, विदिशा साइड उसके इतने बड़े बड़े बीज होते हैं, महाराष्ट्र में कड़ू बादाम बोलते हैं, कड़वी बादाम, वो बीज बादाम जैसे रहते हैं थोड़े बहुत, उसको कड़वी बादाम बोलते हैं। तो वो जो करंज है कांजीर, संस्कृत में उसको कांजीर बोलते हैं, वो द्विस्थानीय अनुभाग है पाप का। ये अनुभाग जो होते हैं ना उसमें निम्ब कम कड़वा होता है, कांजीर उससे अधिक कड़वा होता है। तो तीव्रता की अपेक्षा से विचार करो तो निम्ब से अधिक तीव्र कांजीर है, फिर कांजीर से अधिक तीव्र जो त्रिस्थानीय अनुभाग है उसका नाम है विष, और अंतिम जो चतुस्थानीय अनुभाग है पापों का वो है हलाहल। इसको हलाहल भी बोलते हैं, जैसे दवानल दावानल, हलाहल हलाहल। वो जो विष है कालकूट विष जिसको कहा गया है, वो सबसे तीव्रतम अनुभाग है पापों का। तो ये जो शक्तियां हैं फलदान की, जो शक्तियां हैं कर्मों की, उसको कुछ लोग जीव मानते हैं। जीवो कम उहयम दोन्नी विकलु जीव जीव मिच्छन्ति अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीव मिच्छन्ति। कुछ लोग जीव और कर्म इन दोनों के मिश्रण को जीव स्वीकार करते हैं। आत्मा क्या है? तो बोले जो अपना जो जीव है ना, उसके साथ जो पुण्य पाप का संयोग है, उस मिश्रित अवस्था का नाम आत्मा है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। दोनों भी खलु किए भी जीव मिच्छन, इन दोनों को मिलाकर जीव मानते हैं। अवरे संजोगेण दो कम्बाणम जीव मिच्छन थी। और कुछ अन्य लोग जो नवीन कर्मों का संयोग होता रहता है उसको जीव मानते हैं। एवं विहा बहु विहा परम अपाणम वदन्ति दुम्मेहा तेन परमठ वायी निक्षय वायी निदिग्धा। पर निश्चयवादियों ने कहा है कि ये सब जो आत्मा को अनेक प्रकार से वर्णित करने वाले लोग हैं, वे वास्तव में दुर्मेधस हैं, अर्थात अज्ञानी हैं, और ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो केवली भगवान ने क्या कहा है? क्योंकि देखो, जैन भी अगर सम्यक दृष्टि हो तो वो अपने ज्ञान से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो जब तक जिनेन्द्र भगवान के द्वारा सत्य प्ररूपणा को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उस अमूर्त पदार्थ को अपने छोटे से ज्ञान से कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता। भगवान क्या कहते हैं? ए सव्वे भावा उगल गव्व परिणामणे पन्ना केवल जिने ही बनिया कहते जीवो उत्तिवच्छंती। ये सारे के सारे भाव जिसको वो अन्य मति लोग जीव मान रहे हैं, मिथ्या दृष्टि लोग जीव मान रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि ये जीव कैसे हो सकते हैं? जो दूसरों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो जीव कैसे हो सकते हैं? फिर अंदर एकदम ऐसी भावना आती है ना कि जब ये सारी चीजें जीव नहीं है, ये सारी मान्यताएं मिथ्या है, तो फिर सही जीव को हम कैसे जाने? आप कोई उपाय बताओ सही जीव को पहचानने का। तो सर्वप्रथम भूमिका रूप में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा है और आचार्य कुंदगुण स्वामी ने वर्णन किया है कि जीव क्या है, अजीव क्या है, इसकी पहचान कराइए। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बड़ा सुंदर कलश लिखा है, 34वां कलश। जैसे 23वां कलश था ना कि शरीर का पड़ोसी बनकर थोड़ी देर के लिए देख तो पता चलेगा कि तू शरीर नहीं है और शरीर मैं हूँ, ऐसी भ्रांति उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। यहाँ क्या कह रहे हैं? विरम किम परिणा कार्य को लाहलेन स्वयं अपि निवृत सन षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किञ्चोपलब्धिः। बड़ा सुंदर कलश। आचार्य कहते हैं कि रुक जाओ, जो कुछ भी कर रहे हो आप इस समय मन से वचन से काय से, इसी वक्त रुक जाओ। रुक जाओ, काय से भी रुक जाओ, मन से भी रुक जाओ, वचन से भी रुक जाओ। लोट लकार का प्रयोग है, विराम यानी आदेश दे रहे, रुको। अपरेण अकार्य कोलाहलेन किम, अन्य अकार्यों के कोलाहल से तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है, तुम्हें क्या मिलने वाला है? इसलिए रुक जाओ। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। स्टॉप। स्वयं अपि निवृत सन पश्य षण्मासमेकम्। तो लिखिए, तो अभी तो तुम दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए एक 6 महीने की अवधि आज तय कर लो। कौन सी तारीख है आज? 5। तो कब होंगे 6 महीने? 5 सितंबर। अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक की अवधि निश्चित कर लो। अभी अंग्रेजी हिसाब से, तिथि के हिसाब से आप अलग कर लेना चतुर्दशी। बोलेगी 1-6 महीने की अवधि तय कर लो और स्वयं अपने निवृत्त सन पश्य आत्मनिर्भर होकर मौन धारण करके देखो। कहाँ देखो? हृदय सरस, अपने हृदय रूपी सरोवर में। हृदय रूपी सरोवर का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ जो हार्ट बना है अंदर उसको देखो, उसको देखने की बात नहीं कर रही। हृदय सरोवर का अर्थ होता है अपने भीतर देखो। और फिर हमें बताओ, हम तुमसे प्रश्न करेंगे कि ननु उद्गलाद भिन्न धामन पुंस, उद्गल से भिन्न है तेज जिसका, ऐसी आत्मा की किम अनुपलब्धिर भाती, किंच उपलब्धि भाती। क्या तुम्हें प्राप्ति होती है अथवा प्राप्ति नहीं होती? फिर बताओ तुम। 6 महीने तक मौन धारण करके, 6 महीने तक आत्मनिर्भर होके, 6 महीने तक अपने भीतर देखो। सिर्फ एक बार, केवल इस 6 महीने की अवधि के लिए। फिर दोबारा तुमको हम ये कोर्स नहीं देने वाले, ये सिलेबस, ये प्रोस्पेक्टस नहीं रहेगा। केवल एक बार 6 महीने के लिए तुम आत्मा के पीछे पागल बन जाओ। बहुत विचित्र बात करते हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी, और ऐसी विचित्र बातें अनुभवी के सिवाय कोई कर नहीं सकते। क्या कह रहा हूं कि तुम 6 महीने के लिए पागल हो जाओ, किसी से कोई बोलना चालना नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी धुन में मस्त। भोजन मिले तो ठीक, भूखे मरे तो ठीक, कोई चिंता नहीं, पागल हो जाओ। फिर बतलाना कि आत्मा प्राप्त हुई या नहीं हुई। और इस कथन का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य 6 महीने के लिए आत्मा के पीछे पागल हो जाता है, उसका अनादिकाल का पागलपन हमेशा के लिए मिट जाता है। कुछ बात आ रही है हमने, कैसा लग रहा है सुनकर के? 6 महीने के लिए एक धुन, पक्की धुन बना करके चलो कि मुझे आत्मा को पहचानना ही है। जो 6 महीने के लिए इसके लिए आत्मा के पीछे पागल हो जाए, उसका अनादि का पागलपन हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब आचार्य कुनकुन स्वामी की वाणी सुनिए। ये तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आपको एक सजेशन दे दिया, एक उपाय बतला दिया कि तुम ऐसा कर लो, क्योंकि 6 महीने को क्रॉस करना संभव नहीं है। 6 महीने में वो संस्कार टूट ही जाएंगे। अट्टविहम पियकम्मम सब्वम पुग्गलमयंजिना विनति जस्य फलंतम उच्चै दुःखंति विपच्यमानस। 8 प्रकार के जो कर्म है ज्ञानावरण आदि, उसको जिनेन्द्र भगवान ने उद्गल की रचना कहा है। किसकी? उद्गल द्रव्य की, क्योंकि परमाणु ही होते हैं वो कर्म रूप पर्याय को धारण करके आत्मा से चिपकने वाले। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। उनमें वैसी शक्तियां रहती है कि जब वो उदय में आकर के खिरते हैं तो फिर जीव में उस प्रकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं, यदि जीव विपाकी हो। और यदि पुद्गल विपाकी हो तो शरीर में वैसा रंग आदि उत्पन्न करते हैं, और क्षेत्र विपाकी हो तो एक भाव से दूसरे भाव में जाते समय बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसमें वो फल देते हैं, और भाव विपाकी हो तो आयु पर्यंत वो अपना फल प्रदान करते हैं। सब पुद्गल में है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने जाना है। हैं। इसलिए विपच्च मानस जस फलम दुखम, कर्म का फल चाहे पुण्य फल हो या पाप फल हो निराकुल नहीं होता, और निराकुल न होने के कारण वो कर्म फल सारा का सारा दुख है। कितनी बड़ी बात है, पुण्य का फल भी दुख है, पाप का फल तो दुख है सब जानते ही हैं। तो पुण्य के फल को औपचारिक सुख कह सकते हैं, लोक व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि कितना सुखी आदमी है, भारी पुण्य कमाया होगा उस जन्म में, क्या गाड़ी बंगला है, कितने नौकर चाकर है। पर निराकुलता नहीं है, इसलिए जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि वो सुख नहीं है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। व्यवहारस दरीशन मुवेसु वर्णिदो जिणवरी जीवाए दे सव्ये अज्वसाणादौ भावा। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि व्यवहार नय का ऐसा मत है कि ये भाव जीव है, ये शरीर जीव है, और जो भी संयोग से होने वाली जितनी परिणतियां हैं वो सब जीव है, ऐसा कौन किसका मत है? व्यवहार नय का मत है। व्यवहार नय ऐसे कथन करेगा कि ये सब जीव है। अब इसके लिए दृष्टांत क्या है? जो जीव नहीं है उसको जीव कह रहा है व्यवहार ने, तो उसका कोई उदाहरण तो दीजिए। तो आचार्य कहते हैं राया हुनिगदोत्तीय एसु बल समुदय सारेसु व्यवहारेण दुच्यति तथिको निगदो राया एमेव व्यवहारो अज्वसाणादि अन्न भावाण जीवोत्तिकदो सुत्ते तथिको निच्छिदो जीवो। अब क्या होता है, जैसे राजा राम निकले अपनी सेना के साथ, अथवा श्री कृष्ण निकले अपनी सेना के साथ, तो कोई एकदम अंदर से बाहर निकल करके आता है और फिर पूछता है जो लोग बाहर खड़े थे उनसे, कौन गया कौन गया? तो फिर वो जवाब देता है कि श्री राम गए। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि ये व्यवहार नय कह रहा है कि श्री राम गए, निश्चय से पूरी सेना गई थी और राम तो उसमें एक ही थे, लेकिन कथन क्या होता है, व्यवहार नय का कथन क्या होता है, राम गए। वो चाहे कितनी भी सेना को लेकर गए हो लेकिन राम गए हो, तो व्यवहार नय यही कहेगा। निश्चय नय क्या कहेगा कि राम तो एक ही थे, सेना राम नहीं थी। इसी प्रकार व्यवहार ने क्या कहता है कि ये शुभाशुभ परिणाम पुण्य पाप कर्म और ये गोरा सांवला सुंदर कुरूप शरीर ये सब जीव है, लेकिन वास्तव में जीव तो इनके अंदर कोई एक ही है, और ये जो साथ में लगे हुए हैं जीव के पीछे उनको भी उपचार से व्यवहार से कह देते हैं वो जीव है। उदाहरण कितना सुंदर, आचार्य कुनकुन स्वामी को कुछ विद्वानों ने दृष्टांत शिरोमणि कहा है। इतने सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एकदम बात स्पष्ट समझ में आती है, और दृष्टांत से नवीन बात को समझाया जाता है। पुरानी बात तो अपन समझ ही लेते हैं बिना दृष्टांत के, लेकिन कोई नई बात समझना हो तो फिर दृष्टांत से समझाया जाता है। योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ गुरु ने श्री राम से कहा है कि दृष्टांतेन विना राम ना पूर्वार्थो बुद्धते। हे राम, दृष्टांत के बिना नवीन विषय नहीं समझाया जा सकता। तो इसी प्रकार ये सारे जितने लोग जिस जिसको जीव मान रहे हैं वो सब जीव के व्यवहार में का कथन है, वास्तव में उन सब के अंदर कोई एक ही है जीव, वो सब जीव नहीं है। यह देवंतरी किन लक्षणों साओ एकश अंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव इति पृष्ठ प्राह। यदि ऐसी बात है तो हे गुरुवर आप ये बतलाइए कि वो एक जीव कौन है, उसकी पहचान क्या है। तो अब आचार्य महाराज 49वीं गाथा में, समय सार की 49वीं गाथा में वो बात कहने जा रहे हैं जो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने अपने 5 ग्रंथों में कही है। ऐसी कोई गाथा आपको नहीं मिलेगी जो एक आचार्य ने अपने अनेक ग्रंथों में, समय सार में ये गाथा 49 नंबर पर है, प्रवचन सार में भी ये गाथा आती है, अष्टपाहुड़ में ये गाथा आती है, नियम सार में ये गाथा आती है और पंचाष्टिकाय में भी ये गाथा आती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है जीव को पहचानने के लिए। तो इस 49वीं गाथा में शंकाकार ने ये शंका की थी कि यदि ऐसी बात है, राम गए बोला तुमने तो इतनी आवाज आई, राम इतनी आवाज करते थे क्या, इतने बैंड बाजे, तो व्यवहार ने में वो बात समझ में आ जाती है कि ठीक है राम निकले, पर वो साथ में जो किंकर लोग हैं, सेवक लोग हैं, वो तो साथ में चलेंगे, सेना चलेगी, मंत्री चलेंगे, सब चलेंगे, घोड़े गाड़ी हाथी, पर वहां पर वो जब समझ लेता है कि राम तो एक ही है, लेकिन राम चूंकि अकेले नहीं निकलते तो फिर वो सब साथ में गए, उसको इनने कह दिया कि राम गए, बाकी सबकी कोई खास गिनती नहीं है, गण्यमान जो है वो सिर्फ राम है, इसलिए कह दिया कि राम गए। अब यहां पर ये भूल जाता है, यहां पर वो समझने लगता है कि ये जो दिख रहा है सब यही जीव है, तो फिर शंका होती है कि फिर सही में जीव कौन है जो एक है। तो फिर उसका उत्तर इस गाथा में, 49वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंज स्वामी देते हैं और वो अपन फिर देखेंगे। द्रव्य संग्रह में ये गाथा नहीं आती अभी, खैर अपन जो चल रहा है उसी को चलने दो, रामायण में महाभारत मिक्स मत करो। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक छड़ो सदा देत हुंडो, वाणी भारती तो है जिको दिन रह, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। छह महीने के लिए पागल हो जाओ।